एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
आज हम आपको ले चल रहे हैं समुद्र की गहराइयों में। हाँ, समुद्री जीव विज्ञान यानी मरीन बायोलॉजी की कह सकते हैं एक अद्भुत दुनिया की सैर पर।
और हमारे गाइड होंगे प्रोफेसर फिलिप वी मिलादिनोव। हम उनके काम और विचारों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि समुद्र का जीवन कितना विविध है, कितना जटिल और कितना महत्वपूर्ण भी।
हाँ, और ये विषय आज इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए, हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा
जी
वो इन्हीं महासागरों से ढका है।
बिल्कुल।
और ये हमारे मौसम, हमारी हवा, यहाँ तक कि हमारी जिंदगी के लिए कितने अहम हैं।
सही कहा।
लेकिन साथ ही एक और बात है, ये महासागर आज अभूतपूर्व संकट का सामना भी कर रहे हैं
जी।
जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और भी बहुत कुछ।
हाँ, जिसे वैज्ञानिक एंथ्रोपोसीन कह रहे हैं, मतलब मानव युग का प्रभाव।
बिल्कुल। तो मिलादिनोव का काम हमें न सिर्फ समुद्र के आश्चर्यों को दिखाता है बल्कि वो हमें इन चुनौतियों को समझने और शायद हमारी जिम्मेदारी को पहचानने में भी मदद करता है।
अच्छा, तो ये फिलिप वी मिलादिनोव है कौन, थोड़ा इनके बारे में बताइए।
हाँ, तो फिलिप वी मिलादिनोव वो न्यूजीलैंड की जानी मानी ओटागो यूनिवर्सिटी में समुद्री विज्ञान के प्रोफेसर एमेरिटस हैं।
एमेरिटस मतलब काफी अनुभवी और सम्मानित वैज्ञानिक।
जी हाँ, बिल्कुल। और उनकी खासियत है समुद्री अकशेरुकी जीवों का अध्ययन, मतलब वो समुद्री जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती जैसे स्टारफिश या समुद्री अर्चिन।
अच्छा।
और उनका नज़रिया इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि उन्होंने दुनिया भर के समुद्रों में काम किया है। आप सोचिए, बर्फीले ध्रुवीय इलाकों से लेकर गर्म उष्णकटिबंधीय मूंगे की चट्टानों तक,
मतलब व्यापक अनुभव।
तो सिर्फ लैब में नहीं, फील्ड में भी काफी काम किया उन्होंने। हाँ, और वो सिर्फ एक रिसर्चर नहीं है बल्कि एक बेहतरीन शिक्षक भी माने जाते हैं। मुश्किल वैज्ञानिक बातों को आसान बनाने में माहिर है।
ये तो बहुत अच्छी बात है।
और उनका जो न्यूजीलैंड वाला अनुभव है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध का, वो हमें समुद्री दुनिया का एक थोड़ा अलग ग्लोबल नजरिया देता है।
तो उनके काम का सार क्या है, मतलब मुख्य आइडिया क्या है?
देखिए, मिलादिनोव का जो केंद्रीय विचार है वो ये है कि महासागर सिर्फ पानी का एक बड़ा सा गड्ढा नहीं है।
बिल्कुल नहीं।
अच्छा,
हाँ,
ये एक विशाल 3 आयामी, मतलब 3D
जी
जीवित सिस्टम है।
जी
ऐसा सिस्टम जिसमें हर बूंद जीवन से भरी और सबसे जरूरी बात, सब कुछ एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है।
सब कुछ जुड़ा हुआ है।
हाँ, इसे समझना, वो कहते हैं, पृथ्वी के पूरे स्वास्थ्य को समझने जैसा है।
ये तो बड़ी गहरी बात है।
बिल्कुल। उनकी सबसे बड़ी अंतर्दृष्टि या कोर इनसाइट कह लीजिए, यही है ये आपसी जुड़ाव, इंटरकनेक्टेडनेस। समुद्री जीवन प्रणालियां वैश्विक संतुलन बनाए रखती हैं।
कैसे, मतलब क्या करती हैं ये?
वो हमारे मौसम को कंट्रोल करती हैं, जैव विविधता को संभालती हैं, और वो इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि समुद्र के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं,
जैसे
पानी की अपनी खासियतें, उसका खारापन, तापमान, गहराई के साथ बढ़ता दबाव, धाराएं, ये सब कुछ मिलकर तय करते हैं कि जीवन कहाँ पनपेगा और कैसे पनपेगा।
अच्छा,
तो उनका मकसद हमें इन बुनियादी सिद्धांतों को समझाना है और ये भी कि इस पूरे सिस्टम में हम इंसानों की क्या भूमिका है और क्या जिम्मेदारी।
ठीक है, चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उस माहौल से, मतलब समुद्री पर्यावरण से।
हाँ, बिल्कुल। तो मिलादिनोव बताते हैं कि पानी अपने आप में एक कमाल की चीज है। जैसे इसकी गर्मी सोखने की जो क्षमता है, हाई हीट कैपेसिटी जिसे कहते हैं,
हाँ सुना है,
वो पृथ्वी के तापमान को स्थिर रखने में बहुत मदद करती है। और ये एक बेहतरीन सॉल्वेंट भी है, मतलब विलायक, इसमें पोषक तत्व आसानी से घुल जाते हैं और जीवों तक पहुंचते हैं।
अच्छा, और खारापन, तापमान, दबाव, इन सब का क्या रोल है?
ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। खारापन यानी सैलिनिटी, तापमान की अलग अलग परतें, गहराई के साथ बढ़ता दबाव और पानी का घनत्व या डेंसिटी, ये सब मिलकर तय करते हैं कि कौन सा जीव कहाँ रह सकता है।
और रोशनी, उसका भी तो असर होता होगा।
हाँ बिल्कुल, रोशनी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सूरज की रोशनी समुद्र में एक सीमा तक ही नीचे जा पाती है, उसे फोटिक जोन कहते हैं।
फोटिक जोन।
हाँ, उसके नीचे घना अंधेरा होता है, ए फोटिक जोन। और यही वजह है कि ज्यादातर पौधे वाला जीवन, मतलब प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव, ऊपरी सतह पर ही मिलते हैं।
समझ गई। और समुद्री धाराएं, उनका क्या महत्व है?
अरे, समुद्री धाराएं, ओशन करंट्स, वो तो जैसे समुद्र के अंदर बहने वाली विशाल नदियां हैं।
अच्छा।
हाँ, ये गर्मी, पोषक तत्व और छोटे छोटे जीवों को हजारों मील दूर तक ले जाती हैं। ये पूरी पृथ्वी के मौसम और जीवन वितरण को प्रभावित करती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर समुद्री जीवन के लिए चुनौतियां भी खड़ी करते हैं।
और इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए अद्भुत अनुकूलन या एडेप्टेशंस पैदा हुए होंगे।
बिल्कुल सही, और यही अनुकूलन समुद्री जीवन की विविधता को इतना रोमांचक बनाते हैं। म्लादेनव जीवन को उनकी जीवन शैली के हिसाब से बांटते हैं।
कैसे?
एक हैं प्लैंकटन।
प्लैंकटन
ये वो सूक्ष्म जीव हैं जो ज्यादातर धाराओं के साथ बहते रहते हैं, खुद तैर नहीं सकते ज्यादा।
अच्छा, छोटे छोटे जीव।
हाँ, बहुत छोटे। इनमें आते हैं फाइटोप्लैंकटन, ये नन्हे समुद्री पौधे हैं, और कमाल की बात यह है कि हमारे ग्रह की लगभग आधी ऑक्सीजन यही बनाते हैं।
आधी ऑक्सीजन? ये तो अविश्वसनीय है,
है ना? और फिर है जू प्लैंकटन, ये नन्हे जंतु हैं जो फाइटोप्लैंकटन को खाते हैं। ये पूरा सूक्ष्म जीवन समुद्री भोजन जाल का आधार है।
तो ये छोटे जीव बहुत महत्वपूर्ण हैं।
बेहद। फिर आते हैं निक्टन।
निक्टन
ये वो जीव हैं जो सक्रिय रूप से तैर सकते हैं,
जैसे मछलियां।
हाँ, मछलियां, स्क्विड, वेल, डॉल्फिन, समुद्री कछुए, और यहाँ तक कि पेंगुइन जैसे समुद्री पक्षी भी।
ठीक है, और तीसरा समूह?
तीसरा है बेंथोस। ये वो जीव हैं जो समुद्र की तलहटी पर या उसके अंदर रहते हैं।
तलहटी पर?
जैसे?
जैसे कोरल, स्पंज, या फिर रेत और कीचड़ में रहने वाले कीड़े और क्लैम वगैरह।
तो ये तो हुई विविधता, अब अनुकूलन की बात करते हैं, वो कैसे हैं?
अरे अनुकूलन तो गजब के हैं। सोचिए, खारे पानी में अपने शरीर के अंदर पानी और नमक का संतुलन बनाए रखना, उसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं।
मुश्किल काम लगता है।
है। फिर पानी में अपनी उछाल को नियंत्रित करना, मतलब तैरते रहना या डूबना कंट्रोल करना, बायोन्सी कंट्रोल, और गहरे समुद्र में जो भयानक दबाव होता है उसे झेलना।
बाप रे।
हाँ, और कुछ अनुकूलन तो बिल्कुल अनोखे हैं, जैसे अंधेरे में खुद की रोशनी पैदा करना।
हाँ, बायोल्यूमिनेसेंस, मैंने सुना है इसके बारे में।
जी, बायोल्यूमिनेसेंस। ये सिर्फ दिखने में अद्भुत नहीं है, बल्कि ये शिकार करने, शिकारियों से बचने या फिर साथी को आकर्षित करने का एक कारगर तरीका है।
वाकई कमाल है। और कुछ? हाँ, जैसे वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास का जीवन।
हाइड्रोथर्मल वेंट्स, वो क्या होते हैं?
ये गहरे समुद्र में ऐसी जगहें हैं जहां धरती के अंदर से गर्म रसायनों से भरा पानी निकलता है। वहां सूरज की रोशनी तो पहुंचती ही नहीं।
तो फिर वहां जीवन कैसे?
यही तो कमाल है। वहां कुछ खास तरह के बैक्टीरिया रसायन संश्लेषण, कीमोसिंथेसिस करते हैं। मतलब वो सूरज की रोशनी के बजाय रासायनिक ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं,
बिना सूरज की रोशनी के।
हाँ, म्लादेनव बताते हैं कि ये खोज दिखाती है कि जीवन उन जगहों पर भी पनप सकता है जहां हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये सारे अनुकूलन दिखाते हैं कि समुद्री जीवन ने ऐसी चुनौतियों के हल निकाले हैं जो जमीन पर मौजूद ही नहीं है।
ये तो सच में अद्भुत है। अच्छा, अब जरा कुछ खास समुद्री घरों की बात करें, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम्स की।
हाँ बिल्कुल, म्लादेनव हमें कई तरह के समुद्री आवासों की सैर कराते हैं, जैसे सबसे मशहूर शायद प्रवाल भित्तियां हैं।
हाँ, कोरल रीफ्स, उन्हें समुद्र का वर्षावन भी कहते हैं ना।
बिल्कुल, क्योंकि वहां जबरदस्त जैव विविधता पाई जाती है। और ये बनते कैसे हैं? छोटे छोटे कोरल जीव और उनके अंदर रहने वाले सूक्ष्म शैवाल, जिन्हें जूक सेंथेली कहते हैं, उनके बीच एक खूबसूरत साझेदारी, एक सिम्बायोसिस से।
वाह, और गहरे समुद्र के बारे में क्या?
गहरा समुद्र, डीप सी, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा रहने का स्थान है, लेकिन हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। कहते हैं मंगल ग्रह की सतह से भी कम।
सच में?
हाँ, यहाँ घना अंधेरा है, बहुत ठंड है और दबाव बहुत ज्यादा है। यहाँ का जीवन ज्यादातर ऊपर से गिरने वाले ऑर्गेनिक मलबे पर निर्भर करता है, जिसे समुद्री बर्फ, मरीन स्नो कहते हैं।
समुद्री बर्फ सुनने में अजीब है।
हाँ, ये ऊपर से गिरने वाले मरे हुए जीवों और उनके वेस्ट का मिश्रण होता है, और यहाँ के जीवों के अनुकूलन भी बड़े अजीबोगरीब हैं, जैसे बहुत बड़े मुंह, धीमी मेटाबॉलिज्म, और हाँ, वो बायोल्यूमिनेसेंस यहाँ भी खूब मिलता है।
और इनके अलावा?
और भी कई हैं, जैसे केल्प फॉरेस्ट्स, ये पानी के नीचे के जंगल जैसे होते हैं, जो बहुत से जीवों को घर और भोजन देते हैं।
अच्छा, केल्प?
हाँ, यहाँ कीस्टोन प्रजाति का महत्व भी दिखता है, जैसे समुद्री उद्बिलाव, सी ऑटर्स, वो समुद्री अर्चिन को खाते हैं जो केल्प को खाते हैं। अगर उद्बिलाव ना हो तो अर्चिन पूरे केल्प वन को खत्म कर सकते हैं।
अरे वाह, मतलब एक प्रजाति पूरे इकोसिस्टम को संतुलित रखती है।
बिल्कुल। और फिर हैं एस्चुरीज, ये वो जगह हैं जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं। यहाँ का पानी कम खारा होता है और ये जगहें मछलियों और दूसरे जीवों के बच्चों के लिए नर्सरी का काम करती हैं। बहुत उत्पादक होती हैं ये जगहें।
अच्छा,
तो ये सब अलग अलग दुनियाएं हैं समुद्र के अंदर।
हाँ, लेकिन म्लादेनव इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये सब अलग होकर भी आपस में जुड़ी हुई हैं। एक जगह कुछ होता है तो उसका असर दूसरी जगह पर भी पड़ सकता है।
ये जुड़ाव वाली बात फिर से आ गई। हाँ, और इन सब के पीछे कुछ बड़े सिद्धांत काम करते हैं, जैसे उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, मतलब जीवन कितना पैदा हो रहा है।
वो किस पर निर्भर करता है?
समुद्र में जीवन का आधार तो फाइटोप्लैंक्टन है। वो कहाँ ज्यादा पनपेंगे, ये मुख्य रूप से रोशनी और पोषक तत्वों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।
कुछ प्रक्रियाएं हैं जैसे अपवेलिंग।
अपवेलिंग,
हाँ?
इसमें गहरा, ठंडा और पोषक तत्वों से भरपूर पानी सतह पर ऊपर आता है। ऐसी जगहों पर समुद्री जीवन खूब फलता फूलता है।
अच्छा, और खाद्य जाल, फूड वेब्स?
खाद्य जाल, फूड वेब्स, समुद्र में अक्सर जमीन के मुकाबले ज्यादा लंबे और जटिल होते हैं। कौन किसको खाता है, इसका पूरा नेटवर्क। और कई समुद्री जीवों के जीवन चक्र भी बड़े दिलचस्प होते हैं। बहुत से जीव अपनी शुरुआती अवस्था में प्लैंक्टन के रूप में बहते हैं।
प्लैंक्टन बनकर क्यों?
इससे वो दूर दूर तक फैल सकते हैं, नई जगहों पर पहुंच सकते हैं। ये फैलाव डिस्पर्सल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब चीजें मिलकर तय करती हैं कि कौन सी प्रजाति दुनिया में कहां कहां पाई जाती है, जिसे जैव भूगोल कहते हैं।
समझ गए। तो ये सारी जानकारी, इससे कुछ बड़े संदेश या थीम्स क्या निकलते हैं?
हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है परस्पर जुड़ाव, इंटरकनेक्टेडनेस।
फिर से वही बात।
हाँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। समुद्र एक ग्लोबल सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि एक कोने में कुछ हो रहा है तो उसका असर वहीं तक रहेगा। कहीं दूर हुआ प्रदूषण या जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना, उसका असर हजारों मील दूर हमारे तटों तक पहुंच सकता है।
हाँ, ये तो है। जैसे हमारे मछुआरों की आजीविका पे असर पड़ सकता है।
बिल्कुल, सब कुछ जुड़ा है। दूसरा बड़ा संदेश है चरम स्थितियों में जीवन की अद्भुत क्षमता,
अडैप्टेशन टू एक्सट्रीम्स।
हाँ, वो गहरे समुद्र वाली बात या हाइड्रोथर्मल वेंट्स। सही, गहरे समुद्र के दबाव और अंधेरे से लेकर ध्रुवीय समुद्रों की बर्फीली ठंड या वेंट्स की हौलती गर्मी तक समुद्री जीवन ने गजब के, मतलब कमाल के तरीके खोजे हैं जीने के।
ये हमें क्या सिखाता है?
ये हमें जीवन की लचीलेपन और उसकी असीम संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। शायद हम भी मुश्किल हालात में इसी तरह के रचनात्मक समाधान ढूंढ सकते हैं। एक तरह से प्रेरणादायक है।
बात तो सही है। और तीसरा संदेश?
तीसरा कि महासागर हमारी पृथ्वी की जीवन रेखाएं हैं।
Oceans as Earth's life support।
जीवन रेखा।
हाँ।
ये हमारे मौसम को बनाते बिगाड़ते हैं, हमें सांस लेने के लिए आधी से ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं।
वो फाइटोप्लैंक्टन।
हाँ जी, शुक्रिया फाइटोप्लैंक्टन। और ये पोषक तत्वों को लगातार चक्रित करते रहते हैं। हम अक्सर वेल और डॉल्फिन जैसी बड़ी दिखने वाली चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन मलादेनोव हमें याद दिलाते हैं कि ये नन्हा अदृश्य सूक्ष्म जीवन ही इस पूरे समुद्री इंजन को चला रहा है।
भारत में जैसे हम मानसून पर निर्भर हैं, तो समुद्री स्वास्थ्य हमारे लिए कितना जरूरी है, ये साफ है।
बिल्कुल, सीधा कनेक्शन है। और चौथा संदेश, जो शायद आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी और चिंताजनक भी है, वो है मानव प्रभाव और हमारी जिम्मेदारी।
ह्यूमन इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी,
एंथ्रोपोसीन।
हाँ,
हम इंसान अब समुद्र को अभूतपूर्व तरीके से बदल रहे हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, इससे समुद्र गर्म हो रहा है और ज्यादा अम्लीय भी हो रहा है।
और इसका असर?
ये कोरल रीफ्स के लिए बहुत बुरा है और उन तमाम जीवों के लिए भी जिनके बाहरी कवच या खोल कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, जैसे शंख, सीप वगैरह। अम्लीकरण उनके कवच को कमजोर कर देता है।
ओह, ये तो बड़ी समस्या है।
और ये अकेली समस्या नहीं है। प्लास्टिक प्रदूषण देखिए, केमिकल प्रदूषण, और सबसे बड़ी समस्याओं में से एक, जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना, ओवरफिशिंग, ये सब मिलकर इस विशाल नीले घर को, हमारे महासागरों को बीमार कर रहे हैं।
तो मलादेनोव का काम हमें एक तरह से जगा रहा है।
हाँ बिल्कुल, ये हमें बताता है कि अब और देर नहीं कर सकते, हमें तुरंत संरक्षण, कंजर्वेशन और टिकाऊ तरीकों, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की ओर बढ़ना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है।
मलादेनोव की कुछ बातें तो ऐसी हैं जो दिमाग में बैठ जाती हैं, जैसे उनका कहना कि महासागर खाली जगह नहीं बल्कि त्रि आयामी जीवित प्रणाली है जहां हर घन मीटर जीवन से भरा है।
हाँ, ये सोच ही बदल देता है। समुद्र को सिर्फ सतह से नहीं, गहराई से देखने की बात है ये।
या फिर ये कि समुद्री जीवों ने केवल पानी में जीवन के लिए अनुकूलन नहीं किया है, उन्होंने उन चुनौतियों के समाधान विकसित किए हैं जो जमीन पर मौजूद नहीं है।
बिल्कुल, ये उनकी अनोखी विकासवादी यात्रा को दिखाता है, एवोल्यूशनरी यूनिकनेस।
और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, सच्ची समझ केवल व्यक्तिगत प्रजातियों को जानने से नहीं बल्कि उन संबंधों के जाल को समझने से आती है जो सभी समुद्री जीवन को जोड़ता है।
सही, ये इकोलॉजिकल थिंकिंग पर जोर है। सिस्टम को समझना जरूरी है, सिर्फ पुर्जों को नहीं।
और एक और थी, गहरा समुद्र पृथ्वी का सबसे बड़ा रहने का स्थान है, फिर भी यह मंगल की सतह से कम खोजा गया है।
हाँ, ये हमें बताता है कि जानने के लिए अभी कितना कुछ बाकी है, हमारी अपनी धरती पर ही।
और वो अदृश्य प्लैंकटन वाली बात भी, अदृश्य सूक्ष्म जीवन प्लैंकटन पूरे समुद्री इंजन को चलाता है और वैश्विक ऑक्सीजन को प्रभावित करता है। अनदेखे का इतना बड़ा महत्व।
बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, हम क्या कर सकते हैं?
हाँ, वही, क्या है इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस?
देखिए, पहली बात तो यही है कि हम संरक्षण के प्रयासों को समझें और उसका समर्थन करें। जैसे समुद्री संरक्षित क्षेत्र यानी मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज क्यों जरूरी हैं?
और सिर्फ एक मछली बचाने की बजाय पूरे इकोसिस्टम को बचाने की सोचें।
बिल्कुल। दूसरा, हम अपने स्तर पर टिकाऊ विकल्प सस्टेनेबल चॉइसेस अपना सकते हैं।
जैसे?
जैसे जब हम सी फूड खरीदें तो ये जानने की कोशिश करें कि क्या वो टिकाऊ तरीके से पकड़ा गया है, क्या उससे दूसरी प्रजातियों को नुकसान तो नहीं हुआ।
ये पता करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर कोशिश तो कर ही सकते हैं।
हाँ, और सबसे आसान जो हम सब कर सकते हैं, अपना प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, क्योंकि बहुत सारा प्लास्टिक आखिर में समुद्र में ही पहुंचता है।
ये तो बहुत जरूरी है, हर तरफ प्लास्टिक दिखता है।
तीसरा, जलवायु कार्रवाई के लिए जागरूक होना और आवाज उठाना, ये समझना कि हमारे कार्बन उत्सर्जन का सीधा असर समुद्र के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, उसके गर्म होने और अम्लीकरण पर। ये हमें अपनी जीवन शैली बदलने और सरकारों पर भी सही नीतियां बनाने का दबाव डालने के लिए प्रेरित कर सकता है।
सही कहा। और चौथा?
चौथा शायद सबसे सरल और मजेदार, बस जिज्ञासु बने रहना, समुद्री दुनिया के बारे में और जानना सीखना।
हाँ, जैसे अगली बार बीच पर जाएं तो सिर्फ लहरें ना देखें बल्कि सोचें कि पानी के नीचे क्या चल रहा होगा।
बिल्कुल। या स्नॉर्कलिंग या डाइविंग करें तो वहां के जीवन को, उनके आपसी संबंधों को देखने की कोशिश करें, इससे हमारा अनुभव और गहरा होगा।
सही कहा। मेरे लिए तो इस पूरी बातचीत में सबसे हैरान करने वाली बात शायद वही प्लैंकटन वाली है। मतलब ये नन्ना सा लगभग अदृश्य जीव और पूरी पृथ्वी के जीवन के लिए इतना ज्यादा जरूरी, कमाल है।
हाँ, मेरे लिए भी ये कमाल की बात है। और दूसरी चीज जो मुझे हमेशा आकर्षित करती है वो है गहरा समुद्र। कितना विशाल, कितना रहस्यमयी, और हम उसके बारे में कितना कम जानते हैं। खोज की अपार संभावनाएं हैं वहां।
और मेरे लिए वो आपसी जुड़ाव वाली बात सबसे ज्यादा असरदार रही, ये सोचना कि हमारा एक छोटा सा एक्शन भी, चाहे वो प्लास्टिक का एक टुकड़ा कम इस्तेमाल करना हो या सही सीफूड चुनना, वो उस बड़े नीले ग्लोबल सिस्टम पर असर डाल सकता है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है और साथ में एक उम्मीद भी जगाता है कि हम फर्क ला सकते हैं।
बिल्कुल। और शायद यही मलादिनोव के काम का असली संदेश है। तो अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए यही सवाल छोड़ते हैं, ये सब जानने के बाद कि महासागर हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और आज वो किन गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसा कौन सा एक छोटा करने लायक बदलाव ला सकते हैं जिससे हम इस नीले ग्रह के बेहतर रखवाले, बेहतर स्टूवर्ड बन सकें।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।